क्या उन्होंने अल्लाह की मखलूक में से किसी को भी नहीं देखा? इनके साये दाएं बाएं झुक झुक कर अल्लाह के सामने सर बसजूद होते हैं और आजजी का इजहार करते हैं। यकीनन आसमान और जमीन के कुल जानदार और फरिश्ते अल्लाह के सामने सजदा करते हैं और जरा भी तकबुर नहीं करते। यखाफून रब्बहुम मिन फौकिहिम यफअलून मा युमरून, और अपने रब से जो इनके ऊपर है कपकपाते रहते हैं। ये थी आयत नंबर 48 से 50। इनका उन्वान है, ऊपर वाले अल्लाह की खशियत से कपकपाते हैं। हम अपना भी हाल देखें। अल्लाह ताला ने इन आयात में मखलूकात के सजदे की बात की है। हकीकत यह है कि अल्लाह ताला ने हर मखलूक को मुख्तलिफ अंदाज के सजदे की तौफीक दी। बाज़ जानवर खड़े हैं तो क्याम की हालत में अल्लाह के सामने अपनी आजजी को जाहिर करते हैं। कुछ जानवर हैं कि वो सिर्फ उनका सर झुकता है और वो रुकू की कैफियत में है, और कुछ जानवर अपने पाँव के ऊपर बिल्कुल सर को रख के इस तरीके से झुके हुए हैं कि वो सजदे की कैफियत में। इंसान वो वाहिद मखलूक है कि जिसको अल्लाह ताला ने एक ही वक्त में क्याम की, रुकू की और सजदे की तौफीक अता फरमाई। फिर सोचने की बात है कि वो इंसान जो सब कुछ जानते बूझते ना अल्लाह के सामने खड़ा हो, ना झुके और ना फिर सजदा करे, तो फिर उसको अल्लाह ताला क्यों अशरफुल मखलूकात में शामिल करे? अल्लाह ताला ने यहाँ तकब्बुर की नफी करवा दी, ये कहकर के वो लोग जो वाकई अल्लाह की खशियत को पा जाते हैं, फिर उनके दिल के अंदर इतनी आजजी आती है, वो टूट जाते हैं और वो किसी लम्हे भी अपने आप को अल्लाह के किसी हुक्म को सुनकर अपनी जगह पे कायम नहीं रख पाते। उनका दिल होता है कि हम अपने रब की बात को सुन के फौरन मानने वाले बन जाएं। वकाल ला तत्तखिज़ू इलाहैन इस्नैन, अल्लाह ताला इरशाद फरमा चुका है कि दो माबूद ना बनाओ, माबूद तो सिर्फ वही अकेला है, बस तुम सब मेरा ही डर और खौफ रखो। आसमानों और जमीन में जो कुछ है सब उसी का है और इसी की इबादत लाजिम है, क्या फिर तुम इसके सिवा औरों से डरते हो? वमा बिकुम मिन नेमतिन फमिन अल्लाह, तुम्हारे पास जितनी भी नेमते हैं सब अल्लाह ही की दी हुई हैं। अब भी जब तुम्हें कोई मुसीबत पेश आ जाए तो इसी की तरफ नालो फरियाद करने लगते हो, और जहाँ इसने वो मुसीबत तुमसे दूर कर दी, तुम में से कुछ लोग अपने रब के साथ शिर्क करने लगते हैं कि हमारी दी हुई नेमत की नाशुक्री करें, अच्छा कुछ फायदा उठा लो, आखिरकार तुम्हें मालूम हो जाएगा। और जिसे जानते बूझते भी नहीं इसका हिस्सा हमारी दी हुई रोजी में मुकर्रर करते हैं, वल्लाह तुम्हारे इस बोहतान का सवाल तुमसे जरूर ही किया जाएगा। ये थी आयत नंबर 51 से 56। इसका उन्वान है, इंसान को वो सबक याद नहीं रहता जो मुश्किल हालात में मिलता है। शुरू से इंसानों की एक मुश्किल रही, और वो क्या कि जब कोई मुसीबत आती है तो अपने आप को आजिज़ करके उस वक्त अल्लाह ताला के सामने अपने आप को बेबस महसूस करते हुए हर वो बात की नियत करने लगता है कि जो उसका रब उससे चाहता है। ये बात सिर्फ मुसलमान की नहीं, मुनकिर हो या मुशरिक हो, काफिर हो या किसी दीन से ताल्लुक ना भी रखने वाला हो, हर मुश्किल में इंसान को उसकी फितरत उसके रब की तरफ रहनुमाई करती है। और जब दुनिया के सारे सहारे जब टूट जाते हैं तो उस वक्त फिर आखिरी चीज़ जो इंसान के साथ रहती है वो अल्लाह की याद है। लेकिन मुश्किल क्या है कि जो ही इंसान की वो मुश्किल की हालत टलती है उस वक्त वो फर्जी खुदाओं की याद में दोबारा मशगूल हो जाता है और अल्लाह की दी हुई उस नेमत को दूसरों की तरफ मंसूब करता है। इस तरह उसको वो सबक याद नहीं रहता जो उसकी फितरत ने चंद लम्हे पहले इसको दिया था। ये है वो शैतान की दुश्मनी जो उसने पहले दिन से कसम खाई थी कि मैं इंसानों को जन्नत से दूर करने की कोशिश करूंगा, और नतीजा क्या होता है कि फिर इंसान वाकई अल्लाह ताला की इताअत से निकलने लगता है, एक नहीं दो नहीं कई खुदाओं को मानने वाला बन जाता है। ऐसे ही लोग फिर बाज़ दफा अल्लाह की तरफ कुछ ऐसी चीजों को पेश करने लगता है कि खुदा ना खास्ता फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं। अगली आयतों में कुछ इसी किस्म के अकायद की बात हो रही है। वयजलूनिल्लाहिल्बनातिसुभानहू, और वो अल्लाह सुबहाना ताला के लिए लड़कियां मुकर्रर करते हैं और अपने लिए वो जो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक हो। वह इज़ा बुशिरा हदुहुम बिलुन्सा दल्ला वज्हुहु मुस्वद्दं वहुवा कज़ीम, इनमें से जब किसी को लड़की होने की खबर दी जाए इसका चेहरा स्याह हो जाता है और दिल ही दिल में घुटने लगता है। इस बुरी खबर की वजह से लोगों से छुपा छुपा फिरता है, सोचता है कि क्या इसको जिल्लत के साथ ही लिए रहे या इसको मट्टी में दबा दे। आह क्या बुरे फैसले हैं जो वो करते हैं। आखिरत पर ईमान न रखने वालों की मिसाल बड़ी बुरी है, اللہ کے لیے تو بہت ہی بلند صفت ہے، وہ بڑا ہی غالب اور باحکمت ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 57 سے 60۔ ان آیات کا عنوان ہے جو اپنے لیے نہیں چاہتے وہ اللہ کے لیے مقرر کرتے ہو۔ مشرکین مکہ میں سے ایک قبیلہ ایسا تھا کہ جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتا تھا۔ نہ جانے ان کو کس نے کہا کہ فرشتے ملائکہ فیمیل ہوتے ہیں، صرف ایک گھڑی بھی بات تھی جس کو انہوں نے اللہ کی طرف منسوب کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارا اپنا حال تو یہ ہے کہ بیٹی کی خبر پہ تمہارا چہرہ غم سے سیاہ ہو جاتا ہے۔ تم ذرا سوچو کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے، کیا وہ تم اللہ کے لیے پسند کرتے ہو؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ بیٹیوں کو برا کہتا ہے، اصل بات جہاں جو بتانے کی وہ یہ ہے کہ تمہارے کال اور فیل میں کتنا تضاد ہے۔ اپنے بتوں کے لیے تم وہ پسند کرتے ہو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، لیکن اللہ کے لیے تم بیٹی کو اور عورت کو پسند کرتے ہو۔ ان آیات کے ساتھ ہی جو بات اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کی کھول کے رکھ دی وہ کیا ہے کہ بیٹیوں کی خبر سن کے چہرے کا سیاہ ہونا۔ اسلام نے بیٹی ہونے کی حیثیت سے عورت کو جو شان دی، اسلام اس کا گواہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دو بیٹیوں کو پالا، اچھا سلوک کیا، تو وہ ان کے لیے اس کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گی۔ بیٹیوں کی رغبت اتنی پیاری دلائی گئی کہ خود آپ اپنی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شدید محبت کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں خود اس کو محسوس کرتی تھی کہ اللہ کے نبی یعنی میرے سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ فاطمہ سے کرتے ہیں۔ اتنی آپ کے دل میں چاہت تھی، آپ اپنی بیٹیوں کے لیے دل کے اندر ایک نرم گوشہ رکھتے تھے۔ جب کہیں سفر پہ جاتے تو سب سے آخر میں اپنی بیٹیوں کو ملتے، اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے فاطمہ کو ملتے۔ یہ اللہ کے نبی کی محبت تھی۔ اسلام نے عورت کو اتنا اعلیٰ مقام دیا کہ ماں ہونے کے ناطے اس کا 3 گنا حصہ مقرر کیا۔ بیوی کو خیر المتاع دنیا کہا کہ ایک نیک عورت کسی کو مل جائے اس کے لیے دنیا جہان کی ساری دولتوں سے زیادہ بڑی چیز ہے۔ لیکن یہی سوچے اور یہی تعلیمات لیے ہوئے مسلمان جب دنیا کے مختلف خطوں میں پھیلے تو ہوا کیا کہ اسی طرح ان کا انٹریکشن کچھ مشرکین لوگوں کے ساتھ ہوا کہ جہاں عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا۔ بچی کا پیدا ہونا ان کے لیے ایک اتنا برا افیل سمجھا جاتا تھا کہ شاید وہ خود اس معاملے کے اندر مختار ہیں۔ اور کچھ ایسی جگہوں پہ مسلمان آئے کہ جہاں عورت کو شوہر کے فوت ہونے کے بعد زندہ رہنے کا اختیار بھی نہیں دیا جاتا، اس کو ساتھ ہی ساتھ ستی کر دیا جاتا، اور بعد میں جو اس کی زندگی ہوتی، ہو سکتا ہے کہ واقعی وہ اتنی میزریبل ہوتی کہ وہ خود بھی شوہر کے ساتھ ہی جل جانا پسند کرتی۔ کئی فلموں میں آپ نے بھی ایسے منظر دیکھے ہوں گے، کبھی ہم نے اس وقت اس شدت کو محسوس کیا کہ ایک عورت زندہ اس کو جلا دیا جائے یا وہ خود خوشی سے جل جائے؟ بلکہ ہمارے ہاں اس کو وفا کی دیویوں اور بہت زیادہ مشرقی عورت کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے۔ ایسے معاشروں کے اندر عورت کے ساتھ جو کل ہوتا تھا اور جو آج ہوتا ہے، یہی چیزیں آج مسلمانوں کے اندر بھی دکھنے لگی۔ ہم آج اپنے آپ کو پوچھیں کہ کیا ہمارے دلوں کے اندر بیٹیوں کے بارے میں کوئی غلط خیال تو نہیں آتا؟ کیوں ہوتا ہے کہ ایک سے دوسری بیٹی ہونے لگے تو انسان کا چہرہ جو ہے وہ واقعی مرجھانے لگے؟ کیوں تیسری اور چوتھی بیٹی کی پیدائش کے اوپر پھر اس کی مبارک بھی نہ دی جائے؟ کیوں بیٹا ہو تو فوراً سارے خاندان میں خبر پھیل جائے، اور جب کئی دن تک خبر نہ پھیلے، کچھ نہ ہو تو سمجھ جاؤ کہ اس کے بیٹی ہوئی ہے؟ آخر یہ سوچ ہمارے اندر کہاں سے آئی؟ اللہ نے بیٹی کو کوئی چھوٹی چیز نہیں کہا۔ بیٹیاں تو انسان کے لیے اتنی محبت والی چیز ہوتی ہیں، لیکن جہاں عورت کے ساتھ منحوسیت کو گڑھ دیا جائے، اور اگر کسی عورت کے شادی ہو کے آنے کے بعد سسرال میں کوئی مشکل دن آ جائے تو کہنا کہ اس کے قدم بڑے بھاری ہیں، یہ سبز قدم لے کے آئی ہے، اور پھر جہاں یہ سوچ آنے لگے کہ عورت کو اپنے ساتھ باپ کی کمائی میں سے کچھ جہیز لے کے آنا ہوگا، اور جس معاشرے میں بیوی کا بھائی ہونا یا بیوی کا شوہر ہونا ایک گالی سمجھا جائے، ایسے معاشروں میں بجائے اس کے کہ دین کے مختلف احکامات ان تک پیش کرتے، وہ تعلیمات پیش کرتے کہ جس نے واقعی عورت کو عزت اور مقام دیا، اس کی بجائے انہوں نے انہی کی رسمیں اپنا لیں، اور وہی ہونے لگا جو آج وہاں ہوتا ہے، آج مسلمانوں میں بھی ہوتا ہے۔ آج بھی ایسے حالات ہو گئے کہ جب عورتیں دوسری تیسری بچی کو پیدا کرتی ہیں تو واقعی مرد ان کو ماں باپ کے گھر چھوڑاتے ہیں کہ ان سے کہو کہ تمہیں بھی پالے اور اس کو بھی پالے۔ کوئی کہ یہ ایک عورت کا کوئی فالٹ ہے کہ وہ لڑکی پیدا کر رہی ہے یا لڑکا پیدا کر رہی ہے، حالانکہ آج کی سائنس نے اس چیز کو ثابت کر دیا کہ بچے کی جنس کے اندر جو تعین ہوتا ہے وہ عورت کی طرف سے نہیں، مرد کی طرف سے ہوتا ہے۔ کروموسومز ہوتے ہیں، مرد کی طرف ایکس اینڈ وائی ہوتے ہیں، عورت کی طرف سے ہر صورت میں ایکس کروموسوم آتا ہے۔ مرد کی صورت میں اگر ایکس آ جائے گا تو بیٹی پیدا ہوتی ہے، لیکن مرد کی صورت میں اگر وائی کروموسوم آتا ہے تو ایکس وائی مل کے لڑکا پیدا ہو جاتا ہے۔ سائنس نے اس کو ثابت کر دیا، لیکن لوگ اس کے باوجود اس پڑھے لکھے دور کے اندر بھی اس جہالت سے باز نہیں آتے کہ بعض دفعہ پھر عورتوں کو زندہ جلا دیا جاتا ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ جہیز نہیں لے کے آئیں۔ یعنی آپ سوچیں گے کہ شاید یہ پرانی باتیں ہیں اور کل کی باتیں۔ میں آپ کے سامنے ایک رپورٹ رکھنا چاہوں گی کہ آج کے اس دور میں بھی کیا ہو رہا ہے۔ 17 دسمبر کے 2001 ٹائم میگزین ہے، اس کی ایک رپورٹ ہے کہ راجستھان کی ٹوٹل آبادی 5000 ہے، جس میں عورتوں کی تعداد بہت کم۔ तो जब रिपोर्टर ने पूछा कि आप बताइए कि आपके पास इतनी लड़कियां कम क्यों हैं, तो जो भी लोग वहां मौजूद थे उन्होंने कहा कम क्यों ना हो, मार दी जाती हैं। और एक दाई थी, उन्होंने कहा जब बच्चा पैदा होता है तो मुझे घर वाले कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, और उसके बाद माँ बच्ची की गर्दन को मरोड़ देती है। दिल्ली की एक रिपोर्ट है, एक न्यू बॉर्न कपल ने बच्ची को प्लास्टिक के बैग में डालकर कूड़े के ढेर पे छोड़ा, और बाद में उस बच्ची की जो लाश थी उसको कुत्ते लेके सड़कों पे फिर रहे थे। फिर नईम कमर हैं कोई जिन्होंने रिपोर्ट दी, तो उन्होंने देखा कि एक औरत थी, तो उसने बड़े तपाक से ये बात कही कि लोग न जाने क्यों लड़कियों की पैदाइश के ऊपर इतने परेशान होते हैं। आई हैड फोर डॉटर्स, कि मेरी चार बेटियां थी और मैंने उनसे जान छुड़ा ली। तो उनको पूछा गया कि आपने कैसे जान छुड़ाई, तो उन्होंने कहा कि क्या था, बस उनको दूध नहीं दिया, और इसी तरह रो रो कर मर गई। सिर्फ एक बच्ची थी जो रोती रही 2 दिन तक, लेकिन उसके बाद मैंने उसको दूध नहीं दिया तो वो भी मर गई। इसी तरह 13 अक्टूबर 2005 के डॉन की एक रिपोर्ट है कि राजस्थान इंडिया में बच्ची की पैदाइश के बाद उस बच्ची के मुंह पर रेत की थैलियां रख दी जाती हैं या उसका गला दबा दिया जाता है। 60 मिलियन लड़कियां जो है मारी गई, 6 करोड़ पाकिस्तान की आधी आबादी के बराबर बनता है। आप कहेंगे कि शायद ये वहीं की बातें, अपने मुल्कों में भी यही हो रहा है। आज भी पाकिस्तान के अंदर मॉडर्न लोगों ने तो अबॉर्शन के नाम पे बच्ची को जिबा कर दिया, पहले से मालूम कर लिया, और साइंस की वो तरक्की जो एक नेमत हो सकती थी एक जहमत बना दिया, और वो तो पता कर लेते हैं कि बच्ची चूंकि पैदा होने वाली है तो पहले से अबॉर्शन करवा दे, लेकिन देहातों के अंदर एक ऐसा सीरप पिलाते हैं पैदा होने वाली बच्ची को कि जिसकी वजह से उसका गला अंदर से छिल जाता है, फिर कुछ दिन के बाद बर्दाश्त नहीं कर पाती तो वो मर जाती है। एक ऐसी ही जगह की खबर थी, किसी मुआशरे में जब इतनी बच्चियों को मार दिया गया तो अब औरतें कम हो गई। नतीजे क्या निकला कि उनके मर्दों के पास अब शादी के लिए औरत नहीं थी। उसके नतीजे में उन्होंने कहा कि एक औरत चार की बीवी बनती है। जब एक औरत किसी के घर में शादी होके जाती है तो उसका शौहर उसको मजबूर करता है कि तुम मेरी भी बीवी बनो, मेरे भाई की बीवी भी बनो और मेरे बाप की भी बनो, और इस तरह जबरदस्ती उसे एक औरत को चार मर्दों की बीवी बनाया जाता है। इसी तरह एक जहेज की रिपोर्ट थी, एक नाम लिखा हुआ है रिम की और अनिल, ये 2 कपल था, एक इनकी शादी हुई। शादी के बाद उसने अपनी बीवी से इस बात पे झगड़ा किया कि तुम्हारे माँ बाप ने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी क्यों दिया है कलर की बजाय, और मोटरसाइकिल नहीं लाया, लिहाजा उस लड़की को जला के खत्म कर दिया गया। आज आपको पता है कि जितने भी जलने के केसेस मोस्टली आते हैं पेसिमिस्ट इलाकों में, उसके अंदर जहेज ना लाने की वजह से ये मामला होता है। और आज भी आप देखिए कि इंडियन वुमेन जो है वो इस चीज के ऊपर एहतजाज करती हुई दिखती हैं, अब इस चीज से जान छुड़ाई जाए। बेटी और जहेज ये दोनों साथ साथ चलने वाली चीजें हैं। बहुत सारी जगहों पर बेटी को जो बुरा समझा जाता है या बेटी की जिबा की जो सूरतें हैं उसकी वजह क्या है कि इसको जहेज देना पड़ेगा, और हम में से वो लोग जो जहेज दे सकते हैं वो बड़ी खुशी से देते हैं और कहते हैं कि हम क्या करें, हमारे पास तो अल्लाह ने दिया है। तो याद रखिए कि ये कैसी खराब चीज है कि जब तक वो लोग इससे नहीं बचेंगे जो दे सकते हैं, तब तक ये रस्म जो है ये खत्म नहीं होगी। आज हमारे यहाँ ये कितना मारूफ है कि फलां को जकात का माल दे दो क्योंकि उसने बच्ची की शादी करनी है। बाज लोग बहुत ज्यादा ये सोशल वर्क करने वाले होते हैं तो वो अपने माल से बच्चियों की शादी करवाते हैं। इस्लाम का ये ट्रेंड नहीं, क्या वो रिवाज नहीं आ सकता कि इस तरह से लोगों की हेल्प की जाए, गरीब लोगों की, कि जिसके अंदर उनको लड़कों को कर्ज दिया जाए या लड़कों की मदद की जाए क्योंकि इन्होंने के हक महर देना है। इस्लाम ने शादी का पूरा खर्च मर्द के जिम्मे रखा। ये एक मर्द के लिए कितनी गैरत की बात है कि बूढ़े सुसर की हड्डियों की कमाई के सोफे के ऊपर वो बैठे, इंतजार करे कि जब तक बेगम जहेज के अंदर कोई डबल बेड नहीं लाती मैं उस पर सोऊंगा नहीं। ये तो एक मर्द की मर्दानगी के खिलाफ है। इस्लाम ने ऐसी कोई चीज नहीं रखी। इसी तरह एक रिपोर्ट थी, एशियन कोई शख्स था, उसने अपना किडनी 2500 में बेचा अमेरिका की किसी सिटी में। तो लोगों ने उसको पूछा कि तुमने अपना ये ऑर्गन क्यों बेचा, कहने लगा कि मेरी जवान बहन है मुझे उसकी शादी करनी थी। यानी भाई ने अपना गुर्दा बेच के बहन के जहेज को जमा किया। तो बात यह है कि जब तक हम लोग इसके बारे में नहीं सोचेंगे, और इसके लिए बाज लोग कहते हैं कि लड़के वाले ना मांगे तभी ये रस्म छूटेगी, हालांकि बात यह है कि जब लड़की वाले नहीं देंगे तब छूटेगी। लड़के वाला ये सोच ले कि मुझे नहीं मांगना और लड़की वाली सोच ले कि मुझे नहीं देना, यकीन करें कि बच्चियों की इज्जत माल से नहीं होती। आप भीख से कभी भी इज्जत नहीं ले सकते। जिन्होंने नहीं मानना वो सब कुछ लेके भी कहेंगे कि ये क्यों नहीं आया और वो क्यों नहीं आया। जब इस तरह की लंबी लंबी फहरिस्तें ससुराल से आने लगे तो आप बताइए कि आपकी बच्ची की वो कदर क्या करेंगे, फिर तो आपकी चीज की कदर करेंगे। बाज दफा आप देखिए कि लोग इस तरह भी होते हैं कि सारा कुछ जहेज भी रख लेते हैं और कुछ दिन के बाद उस बच्ची को फारिग कर देते हैं, उसके मैके से आई हुई जो चीजें हैं उसको भी अपने पास ले लिया जाता है। तो बात की जरूरत की बात यही है कि जब तक हम लोग इस चीज के ऊपर नहीं स्टैंड लेंगे, जिनको अल्लाह ताला ने माल दिया है, जिनके इस वक्त दिया है, उस वक्त तक फिर ये बात नहीं होगी। इसी तरह बेटियां जलती रहेंगी, इसी तरह लोग बेटियों की पैदाइश पे मार देते हैं। तो बात यह है कि हम सब कहाँ जा रहे हैं, आज इस्लाम कहाँ है? इस्लाम ने इंसान को क्या बताया कि बच्चियों की अच्छी तरबियत करो? बाज लोग आज भी बच्चियों की अच्छी तालीम नहीं करवाते, کیونکہ ان کے جہیز کے لیے پیسے جمع کرنے ہیں. بعض لوگ بچیوں کو جاب کرواتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کے جہیز کی لسٹیں تیار کرنی ہے. جب تک ایک لسٹ تیار ہو چکی ہوتی ہے بچی کے بال سفید ہو چکے ہوتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی اب اس کی ویلیو ڈاؤن ہو گئی. پھر کبھی بعض دفعہ چیزیں اور مہنگی ہو چکی ہوتی ہیں. یعنی قسم پرسی کے عالم میں جو معاملات ہو رہے ہیں اس کو دیکھیے کہ جس نے بچی کی پیدائش کو خوشی کی بجائے غم بنا دیا. تو اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. ہم جب اپنے آپ کو اس طرح کی رسم و رواج سے نہیں نکالیں گے اور جب تک لوگوں کا ڈر ہمارے دل سے نہیں جائے گا, لوگ کہتے ساس دانا دے گی تو دینے دیں, آپ کی بلا سے خود ہی خاموش ہو جائیں گی. آپ اپنی بچی کو ایسا ادب سکھائیے, ایسا اخلاق سکھائیے. ایک دفعہ اگر اس چیز کی نیت کر لی جائے نا کہ میں نے اپنی بچی کو نہیں دینا, اور اس کے اوپر بچیاں بھی ہیلپ کر سکتی ہیں, ینگسٹر بچیاں جو پڑھی لکھی ہیں جن کو سمجھ آ چکی ہے, اگر وہ اس چیز پہ رہے نا کہ ہم نے جہیز نہیں لینا, تو آپ دیکھیے کہ پھر وہی آئے گا جو ان کا طلبگار ہوگا. آج جتنے دھوکے ہوتے ہیں رشتوں میں اس کی وجہ کیا ہے؟ ماں باپ کیوں پیچھے ڈال دیتے ہیں اچھی خاصی بچیوں کو, بیکار لوگوں کے ہاتھ میں ڈال دیتے ہیں؟ یا بعض لوگ شروع میں بہت زیادہ میٹھے بن کے آتے ہیں, بعد میں پتہ چلتا ہے ان کی نظر تو بچی کے جہیز پہ تھی. ایسی ساری چیزوں سے جان چھوٹ جائے گی. آپ کو ملیں گی قدردان, آپ کو عزت والے ملیں گے, جو آپ کے دین کے لیے آئیں گے, جو آپ کے اخلاق کے لیے آئیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے دور میں جب میری سنتوں پہ عمل کرنا چھٹ چکا ہوگا, ایک مردہ سنت کو زندہ کیا تو اس کو شہیدوں کا ثواب ملے گا. اس وقت یہ ساری سنتیں متروک ہو چکی ہیں. اس وقت شادی بیاہ کی رسمیں اور بارات اور جہیز, ان سب چیزوں کو ہم سب اپنے عمل سے دور کر سکتے ہیں. ورنہ یاد رکھیے کہ یہ بات تو اللہ نے کتنے سال پہلے کہہ دی کہ دل وجہ مسودم وہ قزیم, خون کے گھونٹ پڑنے لگتا ہے. ایک صحابی تھے تو جب اسلام قبول کیا تو کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے رونے لگ جاتے تھے. کہا آپ کو کیا ہے, آپ کیوں روتے ہیں؟ اور اگر میں بھول نہیں رہی تو یہ داحیہ قلبی تھے. کہنے لگے کہ مجھے اپنی بیٹی یاد آ جاتی ہے. کیونکہ عربوں میں دو تین ڈیفرنٹ طریقے تھے. بعض لوگ عورت ڈیلیوری کی پوزیشن میں ہوتی تھی تو اس وقت ساتھ ہی گھڑے کھود کے رکھتے تھے. جب بیٹی ہوتی تو فوراً اس کو اس گھڑے سے نکال کے دوسرے گھڑے میں ڈال دیتے. کچھ جو ہوتے تھے وہ 3-4 سال کا بچی کے ہونے کا انتظار کرتے تھے. یہ کہتے میری اتنی خوبصورت بچی تھی اور جب میں نے اپنے وقت کے مقرر پہ اس کو مارنے کا ارادہ کیا, 3-4 سال کی وہ ہوئی تو میں اس کو لے کے جنگل کی طرف چلا. وہ بچی اپنی توتلی آواز میں مجھے پوچھ رہی ہے ابا کہاں جا رہے ہیں, ابا کہاں جا رہے ہیں؟ تو میں نے کہا ہم جا رہے ہیں سیر کرنے. میرے ساتھ گئی. پھر کہتے کہ میں نے وہاں جا کے زمین کھودنی شروع کی. وہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے زمین کو کھودتی جا رہی تھی. میرا دل پھر بھی نہیں پسیجا. پھر میں نے جب گڑا کھودا تو میں نے اس بچی کو اس کے اندر دھکا دیا اور وہ بچی چیخ رہی تھی ابا کیا کر رہے ہو, ابا کیا کر رہے ہو. لیکن آپ کو پتا ہے حدیث میں بھی آتا ہے کہ کفر جو ہوتا ہے نا انسان کا دل سخت کر دیتا ہے. کہتے میرے دل میں اس کی کوئی بات نہیں آئی اور میں نے اس کو مٹی میں دبا دیا. اب میرا دل پسیجتا ہے. ایک صحابی تھے وہ کہتے ہیں غالباً میں نے 60-70 بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا. اسلام نے تو عورت کو جینے کا حق دیا. آج جس اسلام کو ہم اتنا بوجھ سمجھتے ہیں, جس کا نام لے کے ہم اپنے ناک بھوں چڑھاتے ہیں, اس اسلام نے تو آج کی عورت کو جینے کا حق دیا. آج اگر ہم موجود ہیں تو کیوں موجود ہیں کہ ہمیں پیدا ہوتے ہمارے ماں باپ نے نہیں مار دیا. ہم اپنے آپ بھی سوچیں کہ ہمارے ماں باپ پیدا ہوتے ہمیں ٹریش کین میں ڈال دیتے آج ہم کہاں ہوتے. تو اس ذات کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے جس نے اتنے پیارے قوانین دیے اور اتنا پیارا دین ہمیں عطا کیا. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمٍ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ, اگر لوگوں کے گناہ پر اللہ ان کی گرفت کرتا تو روئے زمین پر ایک بھی جاندار باقی نہ رہتا, لیکن وہ تو انہیں ایک وقت مقرر تک ڈھیل دیتا ہے. جب ان کا وہ وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک ساتھ نہ پیچھے رہ سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں, اور وہ اپنے لیے جو ناپسند رکھتے ہیں اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں, اور ان کی زبانیں جھوٹی باتیں بیان کرتی ہیں کہ ان کے لیے خوبی ہے. نہیں نہیں, دراصل ان کے لیے آنکھ ہے اور یہ دوزخیوں کے روبرو پیش کیے جائیں گے. تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک, اللہ ہم نے تجھ سے پہلے کی امتوں کی طرف بھی اپنے رسول بھیجے, لیکن شیطان نے ان کے اعمال بد ان کی نگاہوں میں آراستہ کر دیے. وہ شیطان آج بھی رفیق بنا ہوا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. فما انزلنا علیک الکتاب, اس کتاب کو ہم نے آپ پر اس لیے اتارا ہے کہ آپ ان کے لیے ہر چیز کو واضح کر دیں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں, اور یہ ایمانداروں کے لیے رہنمائی اور ہدایت ہے. یہ تھی آیت نمبر 61 سے 64, 61 سے 64. اس کا عنوان ہے کتاب جہالت کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے آئی. اللہ نے ہمیں اتنا خوبصورت دین دیا. وہ لوگ جو شرک کے گھڑوں میں تھے اور وہ لوگ جو تھے وہ اس طرح کے کام کرنے والے تھے کہ جن کو اپنا بھلا اور بلا نہیں دکھتا تھا, اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے پاس ایک ایسا نبی بھیجا کہ جس نے لوگوں کو ظلم سے روکا. اور اگر لوگ اس کے باوجود ظلم سے نہ رکیں تو پھر وہ اللہ کو اس بات کی حجت دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کسی لمحے ان کو پکڑ لے. یہاں جو آیت 61 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے ہر ظلم پہ پکڑ لے تو دنیا میں کوئی بھی چلتا ہوا نہ پھرے. اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے. آج گناہوں کے باوجود اگر ہمیں اس دنیا میں रहने की जो मोहलत अल्लाह ताला ने दी है, तो ये उसका हिल्म है और ये हिकमत है। इसके पीछे एक खास सोच है कि देखता हूँ तुम करते क्या हो, और जब अल्लाह ताला इंसान को मोहलत दे और इंसान उस मोहलत से फायदा ना उठाए, तो गोया के फिर अल्लाह ताला उसको ऐसी पकड़ में ले ले कि जिसके ऊपर फिर वो अपने आप को रोक भी ना सके। फिर दूसरी चीज जो हमने देखी कि बेटियों की पैदाइश के नाते से अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम इतने गुमराह हो चुके हो, इतनी गलत किस्म की चीजों को तुमने अपने लिए दीन बना लिया है, अल्लाह के साथ ऐसे अकीदे रखते हुए खौफ नहीं करते, तुम्हें नहीं पता कि अल्लाह ताला ने जो कुछ तुम्हें दिया है वो तुम्हारे हक का नहीं है, बल्कि तुम्हें अल्लाह ताला ने एक इम्तिहान के लिए दिया है। लेकिन ऐसे लोग जब अल्लाह की इस दी हुई नेमत को कबूल ना करें, और अल्लाह के रसूल की जब सच्ची दावत ऐसे लोगों के बीच में आए, और वो दावत जो इनके रस्म और रिवाज के साथ टकराती हो, तो ऐसे वक्त में वो इस दावत के दुश्मन बन जाते हैं। फिर ऐसे वक्त में शैतान इनको खूबसूरत तरीके सिखाता है, वो खूबसूरत लफ्ज बोल बोल के पैगम्बर के दीन को छोड़ने के लिए और अपने रस्म और रिवाज को कायम रखने के लिए खूबसूरत दलीलें पेश करने लगते हैं। आज अगर हम भी देखें तो हमारा क्या हाल है, कि आज हम शादियों और रस्म और रिवाज के एक बोझ के अंदर नहीं दबे हुए? क्या आज ये चीजें हमारे लिए मुसीबत नहीं बन चुकी? क्या आज हमने अपनी शादी को इतना खौफनाक नहीं कर लिया कि चंद दिन के एंजॉयमेंट के लिए हम कितने महीनों उसके लिए तैयार रहते हैं, और नतीजा क्या होता है कि बाद में फिर बातें ही बातें। अगर देखिए, हम सब कुरान पाक पढ़ने वाले इधर यहाँ बैठे में इस चीज को सुन रहे हैं, अगर हम सब ने अपनी जिंदगी के नक्शों को बदलने की नीयत ना की, तो याद रखिये कि ये पढ़ना पढ़ाना बहुत ज्यादा फायदा नहीं देगा। एक पुरसकून किस्म के क्लास रूम में बैठ के अल्लाह का कलाम पढ़ना बहुत आसान, लेकिन जब इस कुरान को हिदायत और रहमत बना के अपनी इंसानियत की तरफ लेके जाते हैं, तो देखिए फिर लोग आपके दुश्मन बनते हैं। और आज देखिए कि शादी गले की फांस बन चुकी है। ऐसा वक्त आता है कि वो नेमते जो एक सादी से तरीके से हो सकते थे, वो घर जो पुरसकून, उनको आज हमने रस्म और रिवाज के एक ऐसे तौक में बदल दिया है कि हमारी वो शादी की एन्जॉयमेंट भी नहीं रहती। आप देख लीजिए कि शादी होने की वजह शादी सेलिब्रेट होती है, पहले शादी पिक्चराइज होती है, पहले हम इंडियन मूवीज को देखते हैं, फिर उसके मुताबिक गाने चूज करते हैं, फिर वैसे हालात हम बनाते हैं। मैं ऐसे कई मौके पीछे भी मेंशन कर चुकी हूँ कि सिर्फ इसलिए लोगों को बिठाया हुआ कि अभी फूल नहीं आए, और फूल क्यों नहीं आए, इसलिए कि सारे शहर से खत्म हो गए। क्यों खत्म हो गए? इसलिए कि दुल्हन के ऊपर फूल फेंकने, इतनी क्या मुसीबत अभी दुल्हन के ऊपर फूल फेंकने की? नहीं, मजबूरी ये है कि जो गाना हमने इधर मूवी में डालना है वो ओरिजिनली वहां फिल्म में हीरोइन के ऊपर सारे घर से फूल फेंक रहे हैं। यानी आप देखिए कि जब हम इस किस्म के हों, अपनी एक एक ख्वाहिश के ऊपर हम फूल कुर्बान कर दें, तो बताइए खुशी कहाँ से आएगी? अल्लाह ने इस किताब को खुदाऊं व रहमा कहा। आप ये आयत 64 के अंदर आखिरी लफ्जों को हाईलाइट कीजिए और अपनी जिंदगी पे गौर करें, क्या ये किताब मुझे भी रास्ता दिखाती है? किताब खुदन कब बनती है? जब इसको गाइडलाइन बनाते हैं, जब ये आपकी हैंडबुक बनती है, जब इसके मुताबिक आपकी जिंदगी होती है, तो ये आपके लिए रहमत बन जाती है। और ये रहमत बनी थी कल भी, ये आज भी बन सकती है। सिर्फ लोगों को रियलिस्टिक अप्रोच की जरूरत है। आज माँ बाप को ये तो फिक्र नहीं कि जिस बच्ची को हम गैरों के घर में छोड़ने जा रहे हैं उसको अल्लाह का दीन आ भी गया कि नहीं, कुरान की रोशनी से उसको मानूस किया कि ना किया। हम फिक्र करते हैं कि उसका जेवर कितने का बना, उसका जोड़ा कितने का बना, उसका मेकअप कहाँ से हुआ। और इसको सिर्फ हमने खूबसूरती के नाते से नहीं, स्टेटस कॉन्शियस बना लिया। पहले ये होता था कि दुल्हन अच्छी लग रही है, आज कहते हैं मेकअप अच्छा हुआ है। पहले कहते थे हुसन आया, रूप आया, आप कहते हैं बताओ किस पार्लर से हुआ। आप देखिए कि जहाँ जज्बात इतने महंगे हो जाएं कि आप सिर्फ एक एक जज्बे की खातिर 30-40 हजार रुपए लगा दें, और वो 30-40 हजार जो सिर्फ चंद घंटे के बाद आपके वॉशरूम में जाएंगे, जो आपके सिंक के अंदर बैठ जाएंगे, क्या मुंह धुलने के बाद दूल्हा नहीं लड़की को देखेगा? उसी के साथ रहना है। अल्लाह ने मना नहीं किया, हदों के अंदर रहते हुए औरत सज भी सकती है, सवर भी सकती है। लेकिन जब ये कहानियां हो, आप नहीं जानते कि कितनी माएं हौके भर के शादी हालों से उठ के आती है, कितनी लड़के वाली माएं जिनका मिजाज और बिगड़ जाता है कि अच्छा अब हम भी फिर किसी ऐसे ही घर की ढूंढेंगे जहाँ हमारे लिए भी हो। हर नई शादी पिछली शादी को लट डाउन करके एक अगला ट्रेंड देने वाली नहीं बन गई। मुझे इस वक्त है हमारी 80% कम्युनिटी की जिंदगी का मकसद क्या है माँ बाप का, कि पहले बच्चों को पालना, फिर उनको अच्छे स्कूलों में पढ़ाना और फिर शादी करना। बस वह हज तक नहीं किया होता, ना खुद करते हैं ना बच्चियों को कराते हैं, क्या कभी इनकी शादियां करनी है। और हैरत मुझे उस वक्त होती है जब लोग ये कहते हैं कि हमारी जवान बच्ची है तो क्या हम पे हज फर्ज है? हम पहले हज कर लें कि शादी कर ले? हमें तो पहले शादी करने दें फिर हज करेंगे। इस्लाम में कहीं हज की रुकावटों में ये नहीं कि तुम्हारे घर में जवान बच्ची है। फिर एक और सोच रख लेते हैं कि शादी करवाना हमारा फर्ज है और इस बच्ची को हज करवाना ये इसके शौहर का फर्ज है। ना शोहर कभी करेंगे ना कराएंगे, इल्ला माशाल्लाह जैसे लोगों से वास्ता पड़ेगा वैसे होंगे। याद रखिए, बच्ची की शादी अगर माँ बाप पे जिम्मे है और अगर आप फर्ज हैं आपके ऊपर जिम्मेदारी है, तो उन बच्चियों और बच्चों को हज भी आपके ऊपर जिम्मेदारी है। जब एक इंसान बालिग हो जाता है, वो खुद कमाता है, सबसे पहले उसकी फिक्र ये होनी चाहिए कि वो अपने फराइज को पूरा करे। तो लिहाजा इस आयत पे जितना भी दिल में दर्द रख के हम बात कर सकें कम होगा, लेकिन सिर्फ सोच देना मकसूद थी कि क्या हमने इस किताब को एक रहमत वाली किताब बनाया, और अगर अभी तक नहीं बनाया तो अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। वल्लाहु अनज़ला मिनस समाई मा और अल्लाह ताला आसमान से पानी बरसा कर इससे जमीन को इसकी मौत के बाद जिंदा कर देता है। यकीनन इसमें उन लोगों के लिए निशानी है जो सुने। तुम्हारे लिए तो छुपाइयों में भी बड़ी इबरत है कि तुम इसके पेट में जो कुछ है इसमें से गोबर और लहू के दरमियान से खालिस दूध पिलाते हैं जो पीने वालों के लिए सहता पचता है। वमिन समरातिन नखील, और खजूर और अंगूर के दरख्तों के फलों से तुम शराब बना लेते हो और उम्दा रोजी भी। जो लोग अकल रखते हैं इनके लिए तो इसमें बहुत बड़ी निशानी है। वउहा रब्बुका इलन नख्ल, आपके रब ने शहद की मक्खी के दिल में ये बात डाल दी कि पहाड़ों में दरख्तों और लोगों की लगाई हुई ऊंची ऊंची छतों में अपने घर बनाओ और हर तरह के मेवे खाकर और अपने रब की आसान राहों में चलती फिरती रहे। इनके पेट से रंग बिरंग का मशरूब निकलता है जिसके रंग मुख्तलिफ हैं, जिसमें लोगों के लिए शिफा है, गौर व फिक्र करने वालों के लिए इसमें बहुत बड़ी निशानी है। ये थी आयत नंबर 65 से 69। इनका उनवान है शहद की मक्खी, कुदरत का शाहकार। यहाँ जानवरों की भी बात हुई लेकिन उस पर बात हम सूरत मोमिनून में करेंगे। थोड़ी सी बात करूंगी शहद की मक्खी के बारे में, क्योंकि इस सूरत का नाम सूरत नहल है और नहल शहद की मक्खी को कहते हैं। ये वो चीज है कि जिसको शायद हमने कभी सोचा भी नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने खजानों में एक ऐसी चीज शामिल की हुई है जो इंसानों की खिदमत के लिए दिन रात रहती है। यहाँ काबिले तवज्जो चीज यह है कि अल्लाह ताला ने सारे मुअन्नस के सीगे इस्तेमाल किए हैं। औहा रब्बुका इलन नखली अनित्तखिजी, जी के अंदर या है, फिर आगे भी कुली फसलुकी, ये क्या है। थोड़ी सी बातें आपको कुछ बताना चाहूंगी कि शहद की मक्खी हमारे लिए शहद कैसे बनाती है। पहली बात यह कि इन मक्खियों की तीन किस्में होती हैं, एक मेल, एक क्वीन और एक वर्कर। मेल जो इनकी मक्खी होती है उसका सिर्फ काम फर्टिलाइजेशन होता है, ये सिर्फ फर्टिलाइज करके पीछे हट जाती है। दूसरी इनके अंदर क्वीन होती है जो इनकी लीडर होती है, इमाम। इनके अंदर भी इमामत और मामूरियत का सबक मौजूद है, ये काम करवाती है, ये किस्म की मैनेजर मक्खी होती है। इसके अलावा जितनी बाकी मक्खियां हैं वो सब वर्कर फ्लाइज होती हैं, पूरा काम करती हैं। आप देखिए कि इतनी अकल दंग रहने वाली बात है, यानी इंसान की हैरत गुम हो जाती है। सिर्फ सुई की नोक के बराबर इस मक्खी का सर होता है, एक सुई की जो नोक है ना इतना सारा है, लेकिन छत्ता बनाती है वो कैसे, 6 कोनों वाला होता है, हेक्सागोनल बोलते हैं उसको। और आज जो लोग ज्योमेट्री को जानते हैं वो जानते हैं कि हेक्सागोनल वो शेप है कि जो कम से कम जगह पे भी चीजों को एडजस्ट करती है। यानी ये 4 कोनों वाला नहीं बनाती, 3 कोनों वाला नहीं बनाती, बल्कि 6 कोनों वाले छोटे छोटे खाने बनाती है। और इसका शहद का छज्जा बनाने का अमल आप देखेंगे खुद तो हैरान रह जाएंगे कि आप कोई घर बनाते होंगे। इस तरीके से ये काम करती है, किनारों से शुरू करती है और बीच में आके पूरा करती है। कभी आपने कुरेशिया बनाया होगा तो उस तसव्वुर को लाए, हम बीच से बना के फैलाते हैं, ये किनारों से बना बना के बीच तक आती है। फिर वो खाने बिल्कुल एक साइज के होते हैं, एक वजन के होते हैं। फिर ये शहद की मक्खी जो है ये फूलों की तरफ जाती है, और अल्लाह ने यहाँ क्या कहा, कुली वश्रबीनी का। अगर आप आयत को देख रहे, ये खुद शहद नहीं पीती, ये हमारे लिए बनाती, एक कतरा खुद नहीं पीती क्योंकि हिफाजत करती है। अल्लाह ने इससे हमें अमानत की हिफाजत सिखाई है। ये फलों के पोलन जो है ना, फूलों फूलों के अंदर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, अगर आप में से कुछ लोग जानते हैं, तो उसको खाती है। और उस पोलन ग्रेन को खा के फिर अपने जिस्म के अंदर से कुछ और केमिकल चेंजेस के बाद इसके जिस्म से एक लिक्विड निकलता है जो फिर ये छज्जों के अंदर डालती है। कहते हैं कि इसको 1 पाउंड शहद बनाने के लिए 50,000 माइल चलना पड़ता है। फसलुकी सुबुला रब्बिका जुलुला, 1 पाउंड शहद बनाने के लिए 50,000 माइल चलती है जिसमें 30 लाख उड़ाने होती हैं इसकी, 20 लाख फूलों का रस चूसती है, और एक मक्खी सारी ज़िंदगी में सिर्फ चंद कतरे शहद के प्रोड्यूस करती है। अल्लाह ने इसको हमारी खिदमत के लिए रखा, और ये शहद जो बना के लाती है और उसका तरीक़ाकार क्या होता है कि जब ये इसके जिस्म से निकलता है, एक मक्खी जो होती है वो जिस्म के जो उसके अंदर से लाभ निकलता है वो जो हेक्सागोनल छोटे 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 थाउजेंड्स किस्म के क्यूब्स होते हैं जिसके अंदर ये डालती है, दूसरी मक्खी फ़ौरन उसके ऊपर मोम लगाती जाती है, वैक्सिंग करती है, स्टेट्रा पैक। फिर एक मक्खी जो होती है दरबान होती है, यानी जैसे सिक्योरिटी पे खड़ी है। अगर कोई ऐसी मक्खी अगर आने लगे छत्ते के पास कि जो ऐसे फूलों के ऊपर से आए जिसके ऊपर कोई इंसेक्टिसाइड किस्म का स्प्रे हुआ हो, तो उस मक्खी को ये वहीं बाहर मार देती है। यानी हमारी क्वालिटी कंट्रोल के लिए वो मक्खी को अंदर आने ही नहीं देती। फिर इसका जो स्केल्टन होता है ना, जो शहद की मक्खी का जो छज्जा होता है, उसका एक खास टेम्परेचर रखना होता है। अगर आप लोगों ने कभी प्योर हनी देखा और उसके अंदर जो कभी उसकी वो मोम होती है वो देखें कि वो इतना रकीक होता है, जरा सा टेम्परेचर ज्यादा करें तो वो मेल्ट हो जाएगा, ज्यादा उसको सख्त कर दें तो वो क्रैक होने लगेगा। और इसके टेम्परेचर को सेट करने के लिए कुछ मक्खियां सिर्फ ये काम करती हैं कि पंखे चलती रहती हैं। ये पंखे चलती हैं जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर बिल्कुल एक जगह पर रहने लगता है। फिर उसके बाद आप देखिए कि जब ये सब काम करती हैं, कोई मक्खी अपनी मर्जी से काम नहीं करती। क्वीन जो फ्लाई है वो जो इनको ऑर्डर देती है ये वो करती हैं। फिर बाज दफा क्या होता है कि कुछ मक्खियां ऐसी होती हैं जो फूलों से रस चूस चुकी होती हैं। अब दूसरी मक्खी उधर जाएगी, टाइम वेस्ट होगा ना। जब किसी फूल से एक मक्खी वो पोलन चूस चुकी होती है तो वहां जाने से पहले एक परफ्यूम नुमा एक जिस्म से चीज निकलती है वो छिड़क जाती है कि दूसरी मक्खी करीब आती है उसको पता चल जाता है कि इसमें खुशबू, इसके अंदर इसका रस चूसा हुआ है और वो अपना वक्त जाया नहीं करती। फिर इसके बाद आप देखिए कि जब ये फूलों को चूसने जाती है ना तो एकदम जब इसको दिखता है ना कि यहाँ रस है तो खुद नहीं चूसती, फौरन वापस जाती है। अल्लाह अकबर, आपको जब देखेंगे आप हैरान रह जाएंगे कि बाकी मक्खियों को ये कैसे बताती है कि फुला जगह के फूलों के अंदर रस है। अकेली नहीं खाती कि पहले मेरा पेट भर जाए। इस पे एक पूरा आर्टिकल है, इंशाल्लाह अल्लाह ने जिंदगी दी आपको और कभी हम इस पे तफसील पे पढ़ेंगे, आपको एक पूरा हैंडआउट दूंगी कि जिसमें सिर्फ एक शहद की मक्खी से पूरी टीम ऑर्गेनाइज की जा सकती है। आप किसी मैनेजमेंट ग्रुप से काम करते हैं, आप किसी जगह किसी कोर्स की मैनेजमेंट में, आप सिर्फ शहद की मक्खी से पूरी मैनेजमेंट सीख सकते हैं। यानी कि जिसका जिधर सर उठाए वो मुंह उठा के चल पड़े। यानी इस तरह से ये खुद देखती है कि यहाँ असत है, वापस जाती है। फिर वहां जाके ये एक रक्स करती है, उस अपनी पोजीशन के अंदर बताती है कि इस ईस्ट की तरफ फूल है या वेस्ट की तरफ है या साउथ की तरफ है। जैसे घूमने वाली एक कैफियत होती है और उसके एंगल 90 डिग्री के एंगल बनाए तो इसका मतलब होता है कि वेस्ट में है फूल, अगर वो 45 का बनाए तो पता चलता है कि वो नॉर्थ में, और किस तरह। और इस तरह जब वो होते फिर वो सब जाती हैं और मिलके आपस में, यानी ये एक छज्जे में आती हैं और कोई कीड़ा कोई मकोड़ा अगर उनके पास आने लगे तो बाहर ही उसको डंक मार के उसको उसके अंदर आने ही नहीं देती। यानी आप पढ़ के देखें कि हैरान हो जाएंगे कि अल्लाह तआला ने कैसे इनको हमारे लिए मुसख्खर किया है। इतना छोटा सा दिमाग अपने रब की बातें सुन रहा है। इस पूरी आयत को आप हाईलाइट कर ले और इसका तर्जुमा आप कम से कम 3 दफा बाद में पढ़िएगा कि अल्लाह ने इसको वही की, हमें भी वही की हुई है उसी रब ने, हम भी उसी जात के पैदा करदा है जिसको उसने पैदा किया। मैं दोबारा पढ़ूंगी इन आयतों का तर्जुमा, अब आप शऊर से सुनेंगे। वाउहा रब्बुक इलन नखली, और वही की आपके रब ने नखल की तरफ, शहद की मक्खी, क्या अनितखिजी मिनल जिबाली बुयूतम, कि तुम बनाओ अपने घर पहाड़ों पे, और कहाँ व मिनश जारी दरख्तों पे। ये भी देखिए अल्लाह ताला की एक हिकमत है कि इसके घर बुलंद पहाड़ों पे और दरख्तों पे क्यों, क्योंकि अगर आम आबादियों के अंदर इसके घर हों तो इंसानों को ये बिल्कुल डंग मार मार के खत्म कर दे। इतनी ज्यादा डेडिकेटेड होती है अपने काम में कि बिल्कुल किसी को अपना वर्क जाया नहीं करने देती। इनमें से कोई मक्खी फारिग नहीं बैठती और इनमें से कोई मक्खी जो है वो कभी किसी दूसरी मक्खी को ओवरकम नहीं करने की कोशिश करती कि मैं इसको छोड़ के तो मैं आगे चली जाऊं। और इस तरह से फिर जब ये सारे काम कर करा के शहद बन जाता है तो उसके बाद आपको पता है कि इनका काम खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद क्या मजाल है कि कोई शहद के अंदर से किसी को ले, आपने अगर किसी शहद तोड़ने वाले को या बेचने वाले को देखा हो तो वो जब छज्जा लाते हैं तो बिल्कुल सील्ड होता है, फिर वो उसको ऊपर से सुराख करके उसके नेक्टर तोड़ के उसमें से शहद निकालते हैं। इसीलिए जो प्योर हनी होता है ना तो उसके अंदर आप देखते हैं कुछ ना कुछ उसके असरात भी होते हैं। फिर ये आजकल जो हमारे पास सारी चीजें आती हैं वो तो मुख्तलिफ तरह से आती है ना, डिस्टिल होके और उसको फिल्ट्रेशन करते हैं और कुछ और इस तरह की चीजें करते हैं, और जो शहद बनता है सुभान अल्लाह उसके ऊपर पूरी एक आपको नशिस्त चाहिए कि शहद की खूबियां कि उसको जिस्म के अंदर हजम करना कितना आसान है। फिर शहद जो है वो हमारी बीमारियों के लिए शिफा है, जले हुए के ऊपर इसकी शिफा है। इस पे भी एक प्रेजेंटेशन है, अगर मुमकिन हुआ कभी तो आपको वो भी दिखाएंगे। फिर शहद मीठा होता है लेकिन ये मोटा नहीं करती, और इसकी कैलोरीज जो होती हैं ये 40% कम कैलोरीज होती है रेगुलर शुगर से। और आप देखिए कि इसमें अल्लाह के नबी ने कहा कि शिफा है, जिस तरह कुरान हमारी रूह के लिए एक शिफा है इसी तरह शहद के अंदर जिस्म के अंदर शिफा है। फिर शहद की एक खूबी होती है कि ये बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर फौरन मिल जाता है। कहते हैं कि अगर आप पानी के अंदर शहद को मिला के पिए तो सिर्फ 7 मिनट के अंदर वो आपके ब्लड के अंदर शामिल होके काम करना शुरू करता है और आपके दिमाग को ताकत देता है। कभी एकदम अगर आपको अपना ब्लड प्रेशर लो होता फील हो या शुगर लो होती फील हो, आप फौरन इसको खोल के पानी में पिए, क्योंकि बाकी जब शुगर खाते हैं ना वो पहले बॉडी में जाके टूटती है फूटती है, उसका बहुत कुछ होता है, बल्कि उसमें मतलब कार्बोहाइड्रेट्स अलग होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो है ये ऐसी चीज नहीं। फिर शहद की खूबी क्या होती है कि ये बैक्टीरिया को हमारे जिस्म में आने नहीं देता, इसकी वजह से हम जर्म से भी पाक रहते हैं। जैसे बाज दफा आप सोचते हैं वायरस फैला हुआ है, बैक्टीरिया पानी में आ गए, तो जो लोग कसरत से शहद को इस्तेमाल करते हैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको ऐसी चीजों से बचा लेता है। और वो जो ऊपर जेल लगाती है उसको रॉयल जेल कहते हैं, उसके अंदर भी कहते हैं कि इतनी यानी खूबी होती है कि उसके अंदर प्रोटीन भी होती है, फैट भी होती है और शुगर भी और वाइटामिन भी होते हैं। और शहद के अंदर अगर आप कुछ ना डालें कुछ ना निकालें तो अपनी जगह पे एक मुकम्मल गजा होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक सहाबी थे तो کہ بھائی کی ایک کا پیٹ خراب ہوا، آپ نے کہا اس کو شہد دو، شہد دیا، واپس آ گئے، کہا اللہ کے نبی اب تو اور لوز موشن ہو گئے، کہا اور دو، پھر گئے، پھر آئے، تیسری دفعہ آئے، آپ نے کہا کہ تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، رب کی بات سچی ہے، اس کو اور شہد دو، جب تیسرے دن دیا تو بالکل ٹھیک ہو گئے۔ وہ اصل میں جسم سے گندے اور فاسد چیزیں نکلنی تھی۔ تو لہٰذا بات یہ ہے کہ اللہ نے جو چھوٹی سی مخلوق بنائی اس نے ہمیں کتنا کچھ سکھایا، ہمارا سر کتنا بڑا ہے، ہمارے سر کے برابر جگہ پہ تھاؤزنڈز مکھیاں جمع ہو سکتی ہیں، تو کل قیامت کے دن کیا ہوگا کہ ایک چھوٹی سی مکھی جو ہے وہ اللہ کی بات مانے اور انسانیت کے لیے شفا والی چیز پیدا کرے، تو ہم ان اپنے بڑے بڑے دماغوں کے اندر انسانیت کے لیے وہ چیز کیوں پیش نہیں کرتے کہ جو لوگوں کی روح کی غذا ہے۔ اس آیت کا اور اس آیت کا بڑا گہرا تعلق ہے، خدا ہوں رحمہ، ساتھ ہی شہد کی بات آ گئی، مکھی نے تو انسانیت کو شہد دیا، ہم نے کیا دیا؟ مکھی مرنے سے پہلے اپنا کام کر کے جاتی ہے، ایک قطرہ نہیں کھاتی پیتی اس شہد میں سے، امانت کتنی پکی ہے، ہم تو کہتے چکھنے میں ختم کر دیں، پھر آپ دیکھیے کہ وہ کھاتی ہے پیتی نہیں ہے، اللہ نے اس کو کہا کھاؤ تو وہ کھا رہی ہے، پیو تو پی رہی ہے، ہم کیوں اللہ کے حکم توڑنا چاہتے ہیں؟ ہم صرف ایک مکھی کو اگر اللہ کی قدرت کی نشانی سمجھ لیں تو میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے بہت ساری رہنمائی کی باتیں ہیں، اور ہمارے یہاں عموماً شہد کی مکھی کو کیا سمجھتے ہیں؟ دشمن، کاٹ جاتی ہے، بھیڑ بن جاتا ہے، اتنا جسم پھول جاتا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک مخلوق کے ساتھ کیا کیا چیزیں جوڑی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔